نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم روح القران آج ہم اس میں پارا نمبر 17 17th پارا اقتربا اس کو کریں گے انشاء اللہ تعالی اس پارے میں سورۃ الانبیاء پوری اور سورۃ الحج بھی پوری ہے سورۃ الانبیاء کی 112 آیات ہیں نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے یہ قرآن پاک کی وہ سورہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ انبیاء کرام کی دعائیں ہیں تذکرہ تو انبیاء کرام کا قرآن پاک میں بہت ساری صورتوں میں ہے لیکن بہت خوبصورت دعاؤں کا مجموعہ اور خاص طور پہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو سننے سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اس بارے کو پڑھنا ہوگا بہت ہی خوبصورت طریقے سے سورت شروع ہوتی ہے پہلی تین آیات لوگوں کی بے حسی اور غفلت کا بیان ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون ذرا سا اس درد کو محسوس کیجئے گا جو اس آیت کے بالکل آغاز میں ہے ایک دم اللہ کے نبی پہ وحی اترے اور ساتھ ہی یہ پیغام آ گیا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں جب بھی کبھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی بات کوئی نیا ذکر کوئی نصیحت آتی ہے تو اس کو وہ کھیلتے کودتے ہوئے سنتے ہیں لاہیتاً قلوبہم دل تو ان کے غفلت میں پڑے ہیں ذرا سا سوچئے یہ کیسی آیت تھی اس نے ہمیں آپ کو کیا بتا دیا کہ یہ قرآن کیا ہے اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہے کسی بھی چینل پہ کوئی خبر آ جائے کسی اخبار میں کوئی خبر چھپ جائے تو انسان پریشان ہو کان لگا کر سنے لیکن قرآن اللہ کا کلام 1400 سال سے زائد عرصے پہلے سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں تمہارا حساب قریب آ گیا اور انسان سوچے بھی نہ آپ دیکھیے جب بھی کوئی چیز قریب آ جاتی ہے نا تو پھر ہماری تیاری اور تیز ہو جاتی ہے کئی مہینے سے پہلے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب شادی کا آخری دن ایک دن پہلے کا سب سے مصروف ہوتا ہے پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ مہمانوں کے آنے سے کتنا بھی پہلے کام شروع کر دیں لیکن جو آخری لمحے ہیں اس میں آپ کی مصروفیت کیا ہے تو یہاں مراد کیا ہے اپنی کوششوں کو تیز کر دو اب آپ کہیں گے قیامت پتہ نہیں کب آنی ہے ہمیں کیا لگے نہیں مم مات فقط قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی تو آج آنکھ بند ہوگی تو آپ کی میری قیامت قریب ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے کیوں رکھا تاکہ ہر لمحے کو محسوس کرو کہ یہ تمہارا آخری لمحہ ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حساب کا پیپر ہر دور میں مشکل لگتا ہے نا اکثر بچے حساب میں پریشان رہتے ہیں اور یہاں حساب کتاب کی باتیں لیکن آخر کیا وجہ ہے اتنی سچائی اتنی بڑی حقیقت ایک کمپلسری پیپر ایگزام ہمارے سر پہ کھڑا ہے اور انسان اس پہ غور نہ کرے اس کی وجہ لاہیتاً قلوبہم یہ جو لاہیہ لفظ ہے نا یہ لفظ ہے بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں کیا ہے یہ دنیا میں مست رہتے ہیں یعنی دلوں کا غفلت میں رہنا اس سے کیا مراد ہے دنیا میں مست رہنا غافل دل ہونا ہدایت کی ناقدری کرنا غیر سنجیدہ ہونا پھر غور و فکر نہیں کرتے اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ دین کو اہمیت نہیں دیتے ہم اگر ان 6 نکات کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے دل کو ڈھونڈیں کہ کیا میرا دل لہو میں تو نہیں پڑا اور دنیا جتنی خوبصورت ہو جائے گی زندگی میں جتنا انٹرٹینمنٹ بڑھتا جائے گا جتنی بے مقصدیت بڑھتی جائے گی اتنا دل غافل ہوگا اور ہر انسان کی موت ہی اس کی قیامت ہے شاعر نے بہت سال پہلے کہہ دیا کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں یہ قرآن آپ کو مجھے غفلت سے نکالنے آتا ہے ویک اپ کال ہے گہری نیند میں سویا انسان بھی کسی کی پکار سن کے ایک دم گھبراتا ہے کیا ہوا کیا ہوا بس یہی کیفیت قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد ہوتی ہے اور ہونی چاہیے آگے آیت نمبر 4 سے 9 میں مشرقین کی ایزا رسانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل ہے یاد رکھیے کہ دعوت اللہ کا کام آسان نہیں ہے لوگوں سے ان کی من پسند چیزیں چھڑوانا ان کی ہابیز چھڑوانا ان کے باپ دادا کے وقت سے چلتے ہوئے رسم و رواج کو چھڑانا یہ آسان نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا کہ آپ ان کی ان ساری تکلیفوں پہ صبر کرتے رہیے یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیجئے آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اتنی خوبصورت کتاب دے رہے ہیں کہ جس میں آپ کا اپنا ذکر ہے. آیت 10 دیکھیے, قرآن حکیم میں آپ کا میرا ذکر ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اور بے شک ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا اپنا ہی تو ذکر ہے, پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ ہے وہ آیت جو مجھے آپ کو اس قرآن کو پڑھنے کا تقاضا کرتی ہے. کسی بھی جگہ آپ کا نام چھپ جائے آپ کتنے خوش ہوتے ہیں, اخبار میں اگر آپ کی کوئی تصویر چھپ جائے, کسی بڑے انسان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کسی نے آپ کو دیکھ لیا. ہمیشہ انسان اپنے تذکرے پہ خوش ہوتا ہے. دنیا میں ہزاروں لاکھوں کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں, قرآن واحد کتاب ہے جو کہتی ہے یا ایھا الناس, اے لوگو. اور افسوس کی بات دیکھیے کہ ہم اپنے ہی ذکر سے غافل ہیں. کتنی کتابیں پڑھیں آج تک سوچئے, مطلب اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر بننے تک ایوریج 200-300 کتاب پڑھ چکا ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ. ریفرنس بکس الگ ہیں, آپ اور میں کتنی پڑھ چکے, کبھی اس کو پڑھیے. یہ کتاب بچپن میں بچے کے لیے گڈ نائٹ اسٹوری بک ہے. قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں, جادو کا قصہ بچوں کو اچھا لگتا ہے. قرآن پاک میں ایسے بہت سارے تذکرے, لائب و ملحون کا تذکرہ. جوانی میں فکشن اچھا لگتا ہے. یہ قرآن سورت یوسف کی صورت میں آپ کو ایک بہترین قصہ سناتا ہے جس سے جوانوں کے دلوں میں قرآن کو پڑھنے کا شوق آتا ہے. پھر جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو ہلچل, بھاگ دوڑ, تو ففرو اللہ وسطبق الخیرات وساری, یعنی ایک تھرل ہے, ایک موومنٹ ہے. اور 40+ میں چلے جائیں تو انسان فطری طور پہ سکون چاہتا ہے. تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن وقت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے. آپ بچپن میں بھی یہ آیتیں پڑھتے تھے, پھر آپ جوانی میں پڑھیں گے, پھر آپ جوان ہو کر پڑھیں, اور اگر اب آپ ادھیڑ عمر میں یہ آیتیں پڑھیں, یہ کتاب آپ کے ساتھ گرو کرتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنی پرانی تصویریں دیکھ کر بہت شرم آتی ہے. کبھی لوگ تصویریں کھینچتے کھنچاتے تھے تو آپ دیکھیے کیسے شرمندگی ہوتی تھی کہ حال حلیہ بدل چکا ہوتا ہے, لیکن لوگ پریشان کہتے کہ ٹھیک ہے اب کھنچانی بھی ہے. اور اس وقت اور بھی شرمندگی ہے جب بچے کہتے کہ ماما جی آپ ہیں, پھر اب آپ کو کیا ہو گیا. یعنی اکثر لوگ دیکھیے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے سب کرتے ہیں لیکن خوشی نہیں ہوتی. لیکن اس قرآن کو آپ دیکھیے, آپ 10 دفعہ پڑھ لیں, 20 دفعہ پڑھ لیں, صبح بھی پڑھا لیں, شام کو بھی پڑھا لیں, اس کا ایک نیا ہی رنگ ہے. لیکن لوگوں کی غفلت جس کی وجہ سے وہ اس کو نہیں سن پاتے, لہٰذا جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے. آیت 11 سے 15, عذاب کے وقت ظالم قوم کا حال, یعنی غفلت کے پردوں کو چاک کرنے کے لیے اللہ کبھی پھر زلزلے لاتا ہے, کبھی طوفان, کبھی سونامی, کبھی کیٹرینا اور کبھی ریٹا, اور کبھی اس طرح فلڈنگ. تو ایسے وقتوں میں ذرا جو ہوتا ہے, ذرا اس کو اپنی تصور کی نگاہ سے دیکھے گا. یہ قرآن کی وہ آیات ہے جو صرف اپنے ترجمے سے ہی سیلف ایکسپلینیٹری, یعنی صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک ایسا منظر پیش کرے گا جیسے خبر نامے میں آپ کسی بھی سیلاب زدہ یا طوفان زدہ جگہ سے لوگوں کو بھاگتا دیکھے. وکم قسم نمن قریتن, اور کتنی ہی ہم نے تباہ کر دی بستیاں جو کہ ظلم کرنے والی تھی, پھر ہم نے ان کی جگہ ایک دوسری قوم کو اٹھا دیا, پھر جب انہوں نے چکھ لیا, محسوس کر لیا ہمارے عذاب کو, پھر وہ وہاں سے بھاگنے لگے. تصور میں نہیں آ رہا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں, کیا کہا جا رہا ہے, لا ترکدو, ڈونٹ رن, تم بہت مصروف تھے نا, اب نہ بھاگو. ورجو الی ما اترفتم فیہ, اور انہی گھروں کی طرف لوٹ جاؤ جن میں تم مزے دیے ہوئے تھے. لگژریس, اترفتم میں طرفا ہے, بہت سکون تھا, آرام تھا, تم اپنے گھروں سے چپکے رہے, تمہیں اپنی دنیا اچھی لگتی تھی. ومساکنکم, اور جو اپنے انہی گھروں میں, لعلکم تسألون, تاکہ تم سے سوال کیا جائے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین, وہ کہیں گے ہائے بچاؤ ہمیں, افسوس ہم ہی ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم, پھر نہیں ہوگی ان کی یہ پکار, یعنی یہی پکارتے رہیں گے پکارتے رہیں گے. حتی جعلناہم حسیدا خامدین, یہاں تک کہ ہم نے ان کو بجھتی ہوئی چنگاریوں کی طرح کر دیا. ساری زندگی انسان بھاگتا ہے, میں مصروف, میں بہت بزی, میرے پاس وقت نہیں ہے, نماز کا وقت نہیں ہے, کسی کی بات سننے کا وقت نہیں ہے, ماں باپ کو وقت دینے کا وقت نہیں ہے, کسی سے اچھا برا کہنے سننے کا وقت نہیں. ہر ایک بھاگ نہیں رہا. آج بھی آپ کسی ہائی روڈ پہ یا ہائی وے پہ یا شارع فیصل پہ دیکھیے گاڑیاں کدھر جا رہی ہیں, ये तो बहुत छोटा सा रोड है, आप बड़े बड़े दुनिया के बड़े रोड्स देखिए, ऐसा लगता है हर एक भाग रहा है भाग रहा है, और मसरूफ़, आई एम बिज़ी, आई डोंट हैव टाइम। आप कहते हैं आप कैसे वक्त नहीं, आप बच्चे से पूछिए उसके हिसाब से भी ज़्यादा वक्त नहीं है। बूढ़े जो बिल्कुल बेकार घरों में पड़े रहते हैं वो भी कहते हैं वक्त नहीं मिलता, दिन पता नहीं किधर चला गया। तो क्या पता चला कि तुम सब जिस दुनिया में अपना दिल लगा बैठे हो, अगर इसको तुमने अल्लाह की रज़ा और उसकी फरमाबरदारी से हटाकर किया, तो एक बात याद रखना कि कायनात खेल तमाशा नहीं, बल्कि यहाँ मार्का है हक को बातिल बरपा है। ये मजमून आयत 16 से 18 में, वमा खलकना समा वल अर्दा वमा बैनहुमा लाइबीन, और हमने आसमान और ज़मीन को खेल में तो नहीं पैदा किया, तमाशा तो नहीं है, ये गुड्डी गुड्डे का खेल थोड़ी है, ये कोई हमने राम की लीला या कोई ऐसा त्यौहार तो नहीं बना दिया कि गॉड खेल रहा है और उसके बाद जब दिल चाहेगा तो लात मार के उसको ख़त्म कर देगा। लहु अरतना हुआ, अगर हम चाहते कि हम कोई खेल ही खेलते, हम अपने पास खुद ही कर लेते, हम ये नहीं कर रहे। बल नकजिफ़ु बिल हक़ अलल बातिल, हम हक के ऊपर बातिल की चोट डाल रहे हैं। फ़यदमुग़ुहु, ये जो वो लफ्ज़ है जिसको उर्दू में आप कहते हैं दमाग, भेजा, बिल्कुल दमे का वही लफ्ज़ है इधर। फरमाया बातिल पर हक की चोट लगाते हैं, फ़यदमुग़ुहु, फिर उसका भेजा निकाल देता है वो। इतना स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है, अगर आप इसकी डेप्थ में जाएँ आप कुरान के इस असलूब पर हैरान हो जाएँ। फ़ैज़ा हुआ ज़ाहिक़, फिर वो भाग जाएगा, दुम दबा के बातिल भाग जाता है। वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफून, खराबी हो तुम्हारे लिए जो बातें तुम सारा दिन करते रहते हो। यानी अल्लाह कहते हैं कि बातिल तो जाएगा, पीछे भी पढ़ कर आए हैं ना सूरह बनी इसराइल में कि बातिल गया और हक आए, कुल जाल हक व जहक अल बातिल इन अल बातिल काना ज़हूका, वहाँ जो लोग ज़हूक था ना वही यहाँ ज़ाहिक है। अब सवाल क्या है आपका, मेरा अपना काम क्या है इस हक और बातिल की जंग में, खुद से पूछिए। क्या सिर्फ रोज रोटी रोजी कमाने और खाने और पकाने में लगी हुई हूँ, घर के काम दुआई ये वो बस ये खेल है, ये तो कोई ज़िंदगी नहीं। ये तो जानवर भी जीतते हैं, परिंदे भी बच्चों के मुंह में दाना दुमका तो डाल ही देते हैं। अगर आप मैं हक के साथ नहीं खड़े तो मान लीजिए हम बातिल के साथ खड़े हैं, ज़ाहिर है कि ज़रूरत पड़े और आप साथ ना दें तो चाहे आप दुश्मन का साथ ना भी दें, अपने दुश्मन का ही साथ दिया। वक्ते फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। दुनिया में अभी नूरे तौहीद का इतमाम भी पूरा नहीं हुआ था और आज जो हालात है, कल एक ऐसी मुझे किसी ने अपने दुख के साथ चीज़ भेजी कि वो किसी भी दुनिया के मुल्क में थी और वहाँ जब वो शॉपिंग पे गई तो कहती है कि अब तो ये जेंडर के जो मसाइल पैदा हो गए हैं, काउंटर पे जो उनकी हेल्प कर रही थी ये समझी लड़की है, थोड़ी देर बाद देखा ज़रा ऊपर हुई तो पता चला उसने अपने पूरी बॉडी को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, सर के आधे बाल औरतों वाले आधे मर्दों वाले, आधे चेहरे पे मेकअप आधे पे नहीं, एक तरफ के कपड़े औरतों वाले एक मर्द, मुझे बताइए इससे भर कर बातिल और क्या आएगा। पर मैंने बस उस पर यही कमेंट करके भेजा कि अब भी ना जागे तो क्या होगा, और मेरे हमारे साथियों ने किसी ने कहा कि ये जुर्म अजीम होगा। वक्ते फुर्सत है कहाँ, पूरी दुनिया में बातिल अपने पंजे फैलाए बैठा है और हम कह रहे हैं हम रोज़ी कहाँ से खाएंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे, भाग रहे हैं और भाग रहे हैं। आप गांव से शहर में आते हैं, शहर से आप बड़े शहर में आते हैं, आप वहाँ से समंदर पार जाते हैं, समंदरों पार फिर आप डूब ही जाते हैं कहीं ना कहीं जाकर। हर बंदा दुनिया में दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हक का साथी बना ले, ज़ाया होने से बचा दे। आज आंखें बंद होंगी हम वहाँ खड़े होंगे जो हमारा असल मुकाम होगा। फिर इसके बाद आगे देखिए 19 से 23, आसमान और ज़मीन में अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी पूरी कायनात इस असूल पे है। जब सूरज चांद सितारे ये सब अल्लाह के आगे झुके हैं तो तुम्हें क्या हो गया। और ये आयत 22 दलील है इस बात की कि अगर अल्लाह एक से ज़्यादा होता, यानी लव का नफी ही मा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, तस्निया का सीगा है ड्यूल, यानी दो खुदा होते तो दुनिया का निज़ाम बिगड़ जाता। फसुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शि रम्मा यसिफून, तो लिहाजा अल्लाह को एक मानो, इसीलिए हर रसूल की दावत दावते तौहीद थी। आयत 24 से 25 में ये पैगाम दिया गया, और ये बात हम पीछे बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये पुकार नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सब तक रही। आगे आयत 26 से 29 में फरिश्तों का असल मकाम बताया गया। मक्का के कुछ लोग फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, बल इबादो मुकरमुन, ये भी मेरे ऐसे ही बंदे हैं जैसे तुम हो, हाँ उनको इज्जत दी हुई है, किसी बात में आगे नहीं जाते और जो काम उनको दे दिया जाए उसको करते हैं। फरिश्ते इतने बड़े होकर अल्लाह के हुक्मों पे कान लगाएं और इंसान इतना छोटा, इतनी हकीर चीज़ से पैदा किया हुआ, वो अल्लाह की बात सुन के बिस्तर से ना निकले, अपना काम ना छोड़े। अस्सलातु खैरो मिनन नौम की पुकार तो सोते में सुन ले। भैया अलैहिस्सलाम, बंदा के मेरे पास वक्त ही नहीं, तो मुझे बताइए कि इससे बड़ी फिर नाशुक्री और क्या होगी। इसीलिए फिर अल्लाह ताला आगे आयत 30 से 33 में अपनी कुदरतें और नेमतें दिखा रहे हैं कि तुमने कभी इस दुनिया को देखा है, कैसे आसमान और ज़मीन आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उनको अलग कर दिया। बिग बैंग थेरी, लोग बड़े मारूफ स्लोगन के साथ बात करते हैं। कुरान देखिए कायनात की तख्लीक का क्या खूबसूरत अंदाज़ दे रहा है, और हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया, और फिर हमने इसमें पहाड़ भी बना दिए कि कहीं ज़मीन ढुलक ना जाए, हिल ना जाए। तमीद अभी हिम, यानी गोल लट्टू को अगर आप ज़मीन पर रखेंगे तो वो घूमेगा। अल्लाह ने ज़मीन पे पहाड़ों की मेहें डाल दी, फिर उसमें खुले रास्ते बना दिए, लअल्लहुम यहतदून, ताकि वो हिदायत पा लें। फिर हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया। आपकी मेरी छतें 100 साल के बाद गिरने लगती हैं, महदूश हैं, इधर से मत गुजरो। कभी आपको मुझे आसमान के नीचे ये खौफ आया कि हम पे गिर ना जाए? एवर न्यू नहीं है, ऐसे फ्रेश नीला, कभी ऊपर सफ़ेद बादल, रात को काले पे सिल्वर सितारे। तो जिस रब का आसमान इतना पुराना हो के भी खूबसूरत है ना, उसकी शरीयत उतनी ही खूबसूरत है जितनी पहले दिन पे थी। जैसे रब की कायनात एवर न्यू है, इसी तरह उसकी दी हुई शरीयत, उसका कलाम भी नया है। फिर सूरज चांद सितारों की और कश्तियों की बात करके अल्लाह ने बताया कि ये सब मैंने बनाया क्यों। मौत और हयात का ये सिलसिला इंसानों की आजमाइश का सिलसिला है। 34-35 में वमा जालना लिबशर मिन क़ब्लिकल खुल्द, हमने आपसे पहले किसी बशर को हमेशगी की ज़िंदगी नहीं दी। सिर्फ इतने से जुमले से कई अकायद की असलाह हो रही है। कुछ कहते हैं खिजर अभी ज़िंदा हैं, उम्र खिजर की माड़ी में आपकी कश्तियों पे लिखा होता है, नऊज़ु बिल्ला के खिजर आकर कश्ती को पार लगा दे। अल्लाह कहता है कि आपसे पहले कोई नहीं रहा, आप नहीं रहे तो बाद में कोई क्या रहेगा। अफ इम मित, क्या अगर आप भी फौत हो जाएं, फहुमुल खालिदून, तो क्या ये आपके दुश्मन जो आपके दुनिया से जाने के ख्वाब देख रहे हैं, क्या ये बाकी रहेंगे? नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, फिर उसके बाद हम उनको उनके अच्छे और बुरे का बदला देंगे। क्या आपको मुझे यकीन है? मौत के दो जायके होंगे, एक बहुत मीठा बहुत अच्छा और एक बहुत ही बदमज़ा। दुआ कीजिए कि आपकी मेरी मौत खैर की मौत हो, हम अपनी मौत के वक्त खुशियाँ पा रहे हों। वरना नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तो तुमको आजमा रहे हैं कभी शर के साथ कभी खैर के साथ। कभी खुशियाँ आजमाइश बन के आती हैं, कभी गम, कभी सेहत की आजमाइश, कभी बीमारी की आजमाइश। वइलैना तुरजाउन, फिर तुम्हें हमारी ही तरफ लौटना है। कितनी बड़ी हकीकत है, आप देखिए जब से सूरत शुरू हुई है क्या दिल पे उदासी नहीं छा रही? लेकिन इसके बावजूद इन आयात को सुनकर मक्का वाले नबी सल्लम के साथ जो रवैया अख्तियार करते थे, उसका तज़किरा आयत 36-37 मुशरिकीने मक्का की गुस्ताखियों का जवाब। वइज़ा रअका अल्लज़ीना कफ़रू, और जब आपको देखते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, तो वो नहीं बनाते आपका मगर मजाक। अहाज़ अल्लज़ी यस्कुरू, क्या ये है वो शख्स जो जिक्र करता है तुम्हारे इलाहों का? वहुम बिज़िक्रि रहमानी हुम काफिरून, और वो तो रहमान के जिक्र से इनकारी हैं। खुलिकल इंसानु मिन अजल, इंसान तो बड़ी जल्दबाजी में पैदा किया गया। सऊरी कुमायाती, अनकरीब दिखा दूंगा तुमको अपनी आयत। फला तस्ताजिलून, बस जल्दी ना करो। असल में मुशरिकीन ने मक्का के लिए धमकी है। आगे भी आयत 38 से 41 में देखेंगे कि कैसे ये नबी सल्लम को तंग करते थे, ख़ास तौर पर सूरत अल-अंबिया उन्हीं सूरतों में से, जब आपका मजाक उड़ाया जाता, तमस्खुर और मौकरी और फन। आज हम छोटी सी बात पे कहते हैं ये कर दो वो कर दो, अल्लाह कहते हैं इनको छोड़ दो। व यकूलू न मताहा जलवात, ये मजाक उड़ाते थे, कब होगा जी, कैसे होगा जी। अल्लाह कह रहे हैं जब होगा तब होगा, लेकिन ये देख लो तुम्हारे साथ होगा क्या। ला यकफून अन वजूह हिमुन्नार वलान जहूरी हिम, ना चेहरों से ना पुश्तों से अपने आग को हटा सकेंगे और ना इनकी मदद की जाएगी। और असल में यहाँ आगे मुशरिकीन मक्का के लिए दावत गौरव फिक्र है। आयत 42 से 44 में कुल मैं यखलऊकुम बिललैली वन्नहारी मिनर रहमान, ये बताओ कि कौन है जो तुम्हें रहमान से बचा ले रात और दिन। मुराद है कि तुम पे रात में भी अजाब आ सकता है, दिन में भी आ सकता है, और जब कभी ऐसा कुछ होता है तो तुम अपने आप को बचा नहीं सकते, लिहाजा फिक्र करो अपनी। और आगे आप देखेंगे कि दिलसोजी के साथ वाज और नसीहत है 45-47 में, कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिलवही, आप इनको कह दें मैं तो तुम्हें सिर्फ वही के ज़रिए से आगाह करता हूँ, यानी मैं तो तुम्हें अल्लाह का कलाम सुनाता हूँ, अब तुम्हारा नसीब। जो बहरा हो वो कैसे सुने, गूंगा कैसे बोले। हाँ जब अजाब आएगा लयकूलुन्ना, तो वो ज़रूर कहेंगे या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। दूसरी दफ़ा आया, आप देखेंगे आयत करीमे तक आने में ये आप कई दफ़ा पढ़ेंगे, उसमें भी ये लफ्ज़ आते हैं ना, यानी जब पकड़ आती है बंदे को अपने गुनाह याद आते हैं, फिर कहते हैं हाय मैंने ही कुछ गलत किया होगा। अल्लाह कहते हैं वन दउल मवाज़ीन अल-क़िस्त, हम रख देंगे अदल की तराजू उस दिन जिसको क़यामत कहते हैं। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, उस दिन किसी नफ्स के ऊपर कुछ जुल्म ना किया जाएगा। व इन काना मिसक़ाल हब्ब, एक दाने के बराबर भी कुछ होगा खरदल राई का, अतैना बिहा, हम उसको निकाल के बाहर कर देंगे, क्योंकि वह कफा बिना हासिबीन, हमारे अकाउंट्स बड़े क्लियर हैं, हमारा कंटेंट जो है वो बहुत क्लैरिटी से लिखा पड़ा है, हम हिसाब लेने के लिए काफ़ी हैं। आप देखिए कि इन आयतों को सुनने के बाद कौन है जो अपना मुहासबा ना करे। इसीलिए फिर आगे आयत नंबर 48-50 में अल्लाह की किताबों से कौन फैज़ पाते हैं उनका तذکرہ है, यानी किताब सबके पास आती है, फ़ायदे सब नहीं उठाते। कैसे, वलक़द आतैना मूसा व हारून, हमने मूसा और हारून को किताब और फुरक़ान दी, यानी फुरक़ान ज़िया और ज़िक्र, ये तीन नाम नोट कर लीजिए तौरात के, किसके लिए, लिलमुत्तकीन। अगर आप इस आयत को सूरत बकरा की आयत 2 से रिलेट करें, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदा लिलमुत्तकीन, तो आपको एक जनरल रूल मिल गया। अंबिया कराम सब के पास आते हैं अपने दौर के लोगों में से, लेकिन फ़ायदा सिर्फ मुत्तकी ही उठाएंगे। कौन है मुत्तकी, अल्लज़ीन यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, वहाँ क्या था, अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब, वही हकीकत है, तौरात हो या कुरान हो, अल्लाह की किताब से फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले तकवा चाहिए। और मुत्तकी कौन था, आपको बता चुकी हूँ, जो अपने आप को बदलना चाहे, जिसको अपने गुनाह चुभने लगें, जिसके हिरात सिराते मुस्तकीम पे डोलते हुए कदम पड़ने लगे। क्या पता चला कि जो बदलना चाहेगा खुद को वो किताब से फ़ायदा उठाएगा, और बाकी सिर्फ पढ़ पढ़ के बख्शते रहेंगे, सवाब गिनते रहेंगे, इतना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, और फिर अल्लाह की खशियत भी हो और क़यामत से वो डरते भी हों। वहाँ एंड पे क्या था, वबिल आखिरती हम योकिनून, यहाँ उसी को मुख्तसर करके क्या कहा, वहाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अन्ज़लनाहू अफान तुम लहू मुनकिरून, इस सवाल को अपने ऊपर ले। और आप देख रहे हैं कि सूरत में क्वेश्चनिंग स्टाइल है, यानी शऊर को बेदार करने का तरीका क्या होता है कि सवाल अगले को बता दो और जवाब वो खुद अपने आप से पूछ लेगा। ये है बरकत अला जिक्र, हमने तो उतार दिया, हमने तुम्हारे लिए पेश कर दिया, अब तुम मुनकिर हो, क्या अब तुम मुंह फेरते हो, तो तुम्हारी चॉइस है। देखिए ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि कद तबैना रुश्दु मिनल गी, वक्त का नबी आ गया था और क्या आएगा, आखिरी नबी आ गया, अल्लाह का प्यारा नबी आ गया, खातिमुन नबीयीन आ गया, जिसको नई नसीब में थी हिदायत उसको नहीं मिली। मैं अक्सर सोचती हूँ कि आज हम कहते हैं कि जी लोग अच्छा बताते नहीं हैं, सख्ती बड़ी करते हैं, इनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं हैं, दीनदार दुनियादारों की कदर नहीं करते, कितनी बातें लोग करते हैं ना, यानी लोग आज भी बेदीनी का, लोग दुनिया में लोगों की बेदीनी का अक्सर खमियाजा दीनदारों पर डालते हैं, इनको नहीं बताना आता, ये बहुत लंबा करते हैं, ये बहुत छोटा करते हैं, ये बहुत गुस्सा करते हैं, ये रूल्स बड़े लगाते हैं। नबी के बारे में आपका क्या ख्याल है, मौलम आज़म कैसे अल्लाह के नबी ने सिखाया, लेकिन जिनके नसीब में नहीं था नहीं मिला। लिहाजा आगे दोबारा तौहीद की बात है, आयत 51-52, हकीकी रब कौन है।